ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం ప్రేమ్, ఓం ప్రేమ్, ఓం ఆనంద్ పరమానంద్. आज का दिन कौन सा दिन है? आज का दिन भाग्य विधाता ने सतयुगी राजयोग की स्थापना करने वाले, सतयुगी राज स्थापन करने वाले यज्ञ पिता के साथ पांडवों की शिव शक्ति पांडव सेना के साथ राजयोग सिखाने वाले, सतयुगी राजा बनाने वाले का चरण पड़ा आबू राज पर. इतना समय हो गया, लग गया आबू को स्वीकार करने कि यहां राजाओं का राजा बनाने वाले आए हैं. अभी माउंट आबू नहीं कहते, अभी आबू राज कहते हैं. ये राज कि इस स्थान पर ही भगवान ने आज के दिन पांच 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 जीरो, समझ आई बात? आज के दिन लास्ट कल्प की तरह यज्ञ कराची से यहां पर आकर के स्थापन हुआ. बाबा ने पांच पांडवों सहित पांच तत्वों को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपनी सेना सहित पांडव पति के साथ पदार्पण किया. इसलिए हिस्ट्री में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है. इसलिए आज के दिन को परमानंद का दिन कहेंगे. आज का दिन हिस्ट्री में विशेष है. तो आप सबको आबू निवासी बनने का, हम सबको आबू राज में राजयोग सीखने वालों को अपने भाग्य का गुण गाना चाहिए. वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य. इसलिए आज प्रोग्राम नहीं था, पर प्रोग्राम बनाया कि आज मैं आबू में बाबा के मधुर महावाक्य आबू में पढ़ूंगी, माउंट आबू में पांडव भवन में पढ़ूंगी. पांडव भवन की स्थापना, पांडव पति आज यहां पधारे थे. तो अभी बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं. ये पांच पांच 26 की मुरली है, 5th of May 2026. ओम शांति. मीठे बच्चे के कितने टाइटल बाबा देता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लवली बच्चे, सिखिलदे बच्चे, ज्ञान गुलजारी बच्चे, नैनो के नूर बच्चे. एक एक टाइटल को याद रखे तो कितना हमारा सौभाग्य है कि भगवान हम बच्चों को अपने हृदय पर नैनों में बिठा के बड़े प्यार से बाप शिक्षक सतगुरु के रूप में पालना पढ़ाई और वरदान देते हैं। तो आज सुख शांति का वरदान देने आए। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग की आदि में आना, उतरना परमधाम से या यहां से ट्रांसफर सतयुग में हो जाना, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सतयुग में के आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्माभिमानी जरूर बनना है, एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिलेगा। एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये गीत किसने गाया? ये जब गीत बजता था, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ब्रह्मा बाबा का फेस देखने जैसा होता था। बाबा रिपीट करते थे, हे प्रभु, हृदय की आवाज बाबा के नैनों से और मुख से पर महसूस होती थी। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने गाया, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माओं को कहेंगे आपस में क्या हुए, ब्रदर्स हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले तो समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक ही है, बाकी लौकिक बाप तो हर एक का अलग अलग है। तो लौकिक बाप बड़ा व परलौकिक बाप बड़ा, लौकिक बाप को तो कभी भगवान वह परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न शरीर ले मतलब पुनर्जन्म लेती है, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, कितनी बारी ड्रेस चेंज करती है, ये बाप आकर समझाते हैं। कितने जन्म लेती है, तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आकर के सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, तब हमको जन्मों का पता चलता है। हमारा दर्शन स्वदर्शन चक्र समझा के बताते हैं कैसे तुमने पार्ट बजाया, किस स्टेज से पार्ट बजाया, किस दिव्यता से पार्ट बजाया, कितनी रॉयल्टी से पार्ट बजाया, कितनी संपन्नता सत्वप्रधान स्थिति से पार्ट बजाया। तो ये बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं कि शिव परम आत्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वो शिव निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बगैर पार्ट बजा ना सके, तो निराकार को भी साकार शरीरधारियों को उनके ही जन्मों का राज बताने के लिए, पार्ट का भेद खोलने के लिए निराकार को साकार शरीर में आना पड़ता है। शरीर बगैर पार्ट नहीं बजा सकते। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं। अब निराकार शिव तो शरीर बगैर पार्ट बजा नहीं सकता, नहीं समझते हैं तो नैनहीन है तो पुकारते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो कौन सा नैन नहीं है? दो नैन तो है, शरीर के दो नैन, दो नेत्र तो सबको है। तो कौन सी आत्मा, कौन सा नेत्र खोल के राह दिखाओ? तीसरा ज्ञान का नेत्र। ये ज्ञान का नेत्र बंद था, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है। इसलिए इस ज्ञान के नेत्र को दिव्य चक्षु कहा जाता है। दिव्य चक्षु विधाता, चक्षु मैंने आत्मा। नैन हीन को राह दिखाओ तो तीसरा नेत्र प्रभु ही आकर के, इस भू से परे रहने वाला प्रभु, परे रहने वाला साकार में आता है और दिव्य चक्षु देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु। कहां की राह? वो आत्मा कौन सा रास्ता भूल गई थी? कहां का रास्ता भूल गई थी जो राह दिखाओ? ये रास्ते तो सब जानते हैं, पहले ए टू जेड किताब मिल जाती थी, उससे दस्ते जानते थे, अभी तो कार में अब बहुत साधन है रास्ते देखने के, पर कहां का रास्ता, कहां की राह? शांति धाम और सुख धाम की राह, सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बनके सदगति नहीं दे सकती और ना ही खुद सदगति पाते हैं। मनुष्य मनुष्य का सदगुरु बनके सदगति या गुरु बनके सदगति न दे सकता है, न खुद सदगति पाता है। तो एक बाप ही सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सदगति देता है। तो उस अल्लाह बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सत्व प्रधान थे तो सत्य युगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी, भारत स्वर्ग कहा जाता, उस स्वर्ग का टाइटल स्वर्ग सुखधाम की प्राप्ति का आधार भारत ही स्वर्ग था। किस कारण किन विशेषता से? आत्मा तो अब भी सृष्टि पर है, मनुष्य आत्मा अब भी है तब भी थी, पर सुख आधार आत्माएं पवित्र और सत्व प्रधान थी। खाली पवित्रता की बात नहीं, सत्यता की बात। सत्य युग में आने का अधिकारी सत्व प्रधान आत्मा, पवित्र सत्व प्रधान। तुम जानते हो क्या बाबा ने बता दिया जो हम जान गए? बराबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, भारतवासी सत्व प्रधान थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, संपत्तिवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे। तो वो उसको याद करते हैं विषय विकार मिटाओ यानी हमको पवित्र बनाओ, सुख संपत्ति बढ़ाओ। हीरे थे वो हीरे जवाहरातों के महल से, तो बाप याद दिलाते तुम गाते थे, तुमने ही अनुभव किया हुआ है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको ही स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहा जाता है। वो सुखधाम सर्व प्रकार का सुख, और वैकुंठ कोई प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का विघ्न नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, द्वैत नहीं, इसलिए वैकुंठ। तो भी स्वर्ग नहीं है, तो बाप समझाते हैं बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु परमात्मा आकर के क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव अपहरण मनाते हैं, ये कोई नहीं जानता कि भगवान आके करते क्या है। हम आत्माओं का बाप शिव है, और हम अपने बाप की जयंती मनाते हैं, साथ में अपनी भी मनाते हैं, स्वर्ग की भी जयंती है, पवित्रता की जयंती है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। तो बाप की बायोग्राफी को कोई जानते नहीं, उनका पूरा परिचय किसी को नहीं है। बायोग्राफी माना आदि से अंत तक का परिचय। गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न को, पर पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि रावण राज्य है, वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसी को पता नहीं है किसको जलाते हैं। ये दस सिर वाला रावण क्या चीज है, हम उनको जलाते क्यों हैं, ये दुश्मन कौन सा है जो दुश्मन की बैठ एफिजी जलाते हैं, बुत जलाते हैं उसका। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्यों क्यों नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तब तो रामराज मांगते हैं, ये दस विकारों का राज कॉन्फ्लिक्ट है, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के। विकार तो वही है, क्रोध से क्रोध लड़ते, काम विकार को खींचते, मोह मोह से कर्मों का हिसाब किताब बनाते हैं। तो और लक्ष्मी नारायण एक मत है, रावण दस मत है, कोई को मालूम नहीं ये पांच विकारों ने मतभेद किए, पांच विकारों ने रावण राज बनाए, और अपवित्रता ने मतभेद तमो प्रधान बने। तो राम राज मांगते हैं क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं है, पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में, इसलिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन, ये पांच विकार ही बड़े ते बड़े दुश्मन हैं, जिनकी एफजी बनाई जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता है कि रावण कौन है, जिसको जलाते हैं वो है कौन, ये रावण राज कब से शुरू हुआ, ये किसी को भी पता नहीं है। फिर बाप हिस्ट्री समझाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, बाप समझाते हैं राम राज सतयुग और त्रेता में, वो निराकार राम का राज, रावण राज द्वापर और कलयुग में। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज था, उनको यह राज कहां से और कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। किसने दिया उनको यह राज, ये समझने की बातें। श्री लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, स्वर्ग कैसे बना, तत्व प्रधान बनने की विधि क्या है, तो ये समझने की बातें हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप समझाते हैं। समझने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि तो है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में बुद्धि तो है, चाहिए क्या, अटेंशन प्लीज, अटेंशन चाहिए। भगवान जो समझा रहे हैं वो ध्यान दे के सुनने की बात है। मोस्ट बेलवेड बाप है, सब तो भक्ति मार्ग में भी उनको पुकारते हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज था तो दुख का नाम भी नहीं था, अभी दुख धाम है, अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था तो अनेक धर्म, अनेक राज, अनेक भाषाएं, अनेक आत्माएं कहां चली जाएंगी, इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएंगी, किसी को पता नहीं है। तो नैनहीन है, दिव्य बुद्धि का नेत्र नहीं खुले, दिव्य चक्षु नहीं मिले। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है, तो ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मा भूल गई है हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में देवी देवताओं का राज था, वो कहां गया, गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्कर कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है, कौन सी आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है। जो पहले पहले आई सत्व प्रधान देवी देवता थे, 84 जन्म भोग, अंत में पतित बन जाती हैं, और गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं। बाकी मनुष्य तो अपने आप को स्वच्छ बनाते हैं, समझते हैं हम पवित्र, स्वच्छता अलग चीज है। व्रत नियम कोई विशेष सिचुएशन में स्वच्छ रहते हैं, पवित्र जीवन भी जीते हैं, परंतु पावन एक परमात्मा बनाते हैं। कुछ पकारते हैं, पतित हैं। हे पतित पावन आओ, पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? अब पतित पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? जो खुद ही अंधकार में है दूसरे को लाइट कैसे देंगे? खुद ही चूहेदानी में फंसे हुए हैं बाहर कैसे निकालेंगे? मुक्त कैसे कर सकेंगे? जीवन मुक्ति कैसे देंगे? तो दुख का कारण, सारा विश्व दुखी क्यों है? तो बाप समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य यानी पांच विकारों का राज्य था। रावण राज ये पांच विकारों का राज्य, विकारों के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। 84 जन तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। आत्माएं पहले सत्व प्रधान, सत्ययुग में सत्यता की पवित्रता की, पवित्रता ही सत्य है, सत्यता है, पवित्रता ही दिव्यता है, पवित्रता ही सच्ची सुंदरता है। वो उसमें प्रधान थे, ऊंचे थे भाई, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल, तो वो स्टेज एकदम हाई ऊंची थी। मास्टर बहुत, हेड मास्टर वो हमारे हाईएस्ट लेवल पर। सत्व प्रधान, सत्यता में प्रधानता थी। फिर त्रेता में सत्व, आत्मा में खाद पड़ती है। बाप भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं ना, पर परमात्मा शिव का आना और बाकी आत्माओं के आने में अंतर क्या है? इसलिए परमात्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? आते तो दोनों शरीर में है, आत्मा भी शरीर धारण करती है, परमात्मा भी शरीर धारण करते हैं, पर क्या अंतर है? और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं जन्म नहीं लेता हूं, अवतरित होता हूं। साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता, जिनके किसमें साधारण बूढ़ा तन कौन? जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने बाबा सिर्फ एक को नहीं दे रहे, ये बाबा पढ़ा रहे हम सबको। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है। ब्रह्मा बाबा को भी सिखाया और हमको भी सिखा रहे हैं। तो तुम यहां किस लिए आए हो? बाबा के पास किस लिए आए हो? स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए। ये स्वर्ग की बादशाही सिर्फ बाप दे सकते हैं। पवित्रता, सत्व प्रधान, संपूर्ण सुख बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते हैं, और ही रंक बनते जाते हैं। अब बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए, गरीब बन गए, कंगाल बन गए। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो तीनों चीजें थी, प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। उससे ही फिर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। ग्रस्त पवित्र ग्रस्त आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था, संपूर्ण पवित्रता, डबल अहिंसक थे। वहां हिंसा का नाम नहीं था, द्वापर से लेकर के हिंसा शुरू हुई, काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत हो गई है। सतयुग में तुम 100% सॉल्वेंट थे, सिरताज थे, सतो प्रधान थे। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट से मतलब प्रॉस्परस और कंगाल, सिरताज और मोहताज। ये राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। 100% सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट। रावण की मत पर मनुष्यों को देखो क्या हाल हो गया है। राज्य लोग भी जो पवित्र राजाएं होकर के गए हैं, द्वापर कलयुग के राजाएं, जो सतयुग के राजाएं थे, जो होकर के गए हैं, उनके जाकर चरणों में पड़ते हैं, महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न है, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, और फिर कहते हैं आपको ही तरस पड़ता है हमारे पर, आप ही रहम दिल है हमको, आकर आप रहम दिल हो, इतने रहम दिल, हम दुखी हो गए, पतित बन गए, अभी हमको मंदिर लायक बनाओ। पतित बन गए, डबल हिंसक बन गए हैं, विकारी बन गए हैं, अभी मंदिर बंदर से मंदिर लायक बना। किसको भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर दुनिया का चक्कर फिरना चाहिए। इसलिए तुमको पावन यहां ही बनना है, पावन बन के ही सतयुग में जाएंगे। पतित तो सुख धाम या शांति धाम में जा नहीं सकते, और बाप राज समझाते हैं कि तुम जो सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, तुम ही मैले बन गए, तो तुमको ही स्वच्छ बनने। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आयो, फिर गोल्डन एज बनने। इस स्मृति कितनी श्रेष्ठ स्मृति है कि हम ही थे, हम सो हम, तब मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है, तो दुख में पुकारते हैं ना, गीत सुना, हम नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, अग पग ठोकर खाऊं मैं। हम कैसे जाएं अपने धाम वापस, शांति धाम में, और दिखाने वाला क्या आके दिखाते हैं। वो लोग तो क्या देते, परमात्मा सर्वव्यापी है, और उधर दूसरी तरफ फिर अपनी बात को सर्वव्यापी कह के फिर कहते हैं इतने अवतार लिए, कच्छवतार, मच्छवतार, वराहावतार, गालियां देते, सुअर का अवतार, कछुए का अवतार, मछली का अवतार, और फिर परशुराम अवतार कुल्हाड़ा लेकर के 21 बार क्षत्रिय को खाली किया, गला काटने वाला उसको अवतार कहेंगे क्या? भगवान इतना पावन बनाने वाला डबल हिंसक, उसको हिंसक बना दिया। चलो पशु पक्षी का भेद न समझने के कारण हिंसक बना दिया। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? ये हो नहीं सकता। जैसे सुदर्शन चक्र से किसी इंसान का गला काटेंगे क्या? ये कुड़ारा लेकर के परसा लेकर के तो बाप समझाते हैं, तुमने इस चक्कर में कैसे 84 जन्म लिए? और ये सब बातें समझा के फिर कहते हैं, अच्छा मुजल्लफ को याद करो। एक तो मुजल्लफ को याद करो, सारी बातें समझा दी तो एक तो मुझे याद करो। कैसे याद करो? हे आत्माएं, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े। तुमने उल्टा समझ लिया। मैंने कहा आत्माभिमानी देह को धारण करने वाली आत्मा स्वर्गवासी सत्व प्रधान बनो, तुमने उसको बदली करके देह अभिमानी बन गए। शब्द वही है, देही अभिमान और देह अभिमान। तो मेरे से किसी ने पूछा, यानी अभिमान तो खराब है ना, देही अभिमानी भी अभिमानी नहीं? वो आत्मा को निश्चय और नशा रहे, अपने आप को मान्य आत्मा है, परंतु हमने उसको कहां पर जोर देना चाहिए वो जब बदली कर दिया। मिसाल के तौर पर ये मिसाल बताती हूं, आप एक लाइन लिखो, चोर भागा रोको मत जाने दो, चोर भागा रोको मत जाने दो। अब आप पढ़ो उसको, चोर भागा रोको मत जाने दो। फिर आपने पढ़ा, चोर भागा रोको मत जाने दो, तो विकारों को रोको, बुद्धि को उसमें नहीं जाने दो, आत्माभिमानी बन जाओ। शब्द तो वही है पर जोर किस पर दे रहे हैं? आत्माभिमानी। इसमें लिखा हुआ नहीं है चोर भागा रोको मत जाने दो, मुरली में लिखा हुआ नहीं है, ये तो मैं देह अभिमानी और आत्माभिमानी का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। फिर कहेंगे वो चोर भागा, इसमें मुरली में तो लिखा हुआ नहीं है, है नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। हमने जोर देना कहा था और जोर दिया कहा, रुकना कहा था वहां नहीं रुके, दूसरी जगह रुके, फोकस कहा करना था दूसरी जगह फोकस करने लगे। दे अभिमानी बन तुम बिल्कुल दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्माभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की आदि में आना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो बलग्रस्त त्योहार में, परंतु अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद जल जाएगी। देही अभिमानी, अभी मान लो तुम आत्मा, जान तो लिया मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, जान लिया मैं लड़की हूं या लड़का हूं, माना अपने आप को मैं आत्मा, जितना शरीर को मान लिया उतना आत्मा को मान लो। अभी हे आत्मा अभी मान ले, मैंने चक्षु दे दिया है, नेत्र खोल दिया है, जानने के साथ मानना मुख्य बात। मुझे याद करो तो खाद नल जाएगी, तुम पवित्र बन जाओगे। मैं बच्चों को ले जाऊंगा सबको, अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है, जब इनों का राज था तो और कोई धर्म नहीं था, द्वापर से लेकर और धर्म आते हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं। अब बहुत धर्म होने के कारण, अपने को देव और पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, हिंदू कह देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तो सारे विश्व पर तुम्हारा राज था और सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हो। भारत ही हेवन था, अब हेल बन गया, फिर हेल को हेवन बाप बगैर कोई नहीं बना सकते। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता, यहाँ के मनुष्य संपूर्ण विकारी हैं, संपूर्ण विकारी मन पतित। ये भारत शिवालय था, पूर्ण पवित्र, शिव बाबा की स्थापना की हुई, बाबा स्वर्ग बनाते फिर रावण नरक बनाते, रावण श्राप देते, बाप से 21 जन्म वर्षा मिलता। अब तुमको हर एक को हर एक तुम अब हर एक बाप की याद में रहो, हर एक को डायरेक्शन है, एक की याद में रहो, कोई देहधारी की याद में नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप वर्षा देता, रावण श्रापित करती। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है, इस पर ही जीत पानी है। गाया भी जाता है देदान तो छूटे ग्रहण, वो ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी पर परछाया पड़ता, पृथ्वी का तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहा जाता। तो अब बाप कहते हैं तुम्हारे ऊपर कौन सा परछाया पड़ा है, ये 5 विकारों रूपी रावण का परछाया पड़ा, ग्रहण है, इसलिए 5 विकार दान में दे दो। पहला दान दो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। पवित्रता का व्रत लो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते। हम रोहानी बच्चों धारणा, बाप जो नॉलेज देते हैं उससे पूरा अटेंशन दे करके पढ़ना है। ज्ञान के 3rd नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप को याद करना है, पांच विकारों का दान दे देना है और एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों व मुखड़े से दिखाई देती है। तीसरी बात, उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को सरल बनाओ। अव्यक्त शरण, सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति। जिनको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है वो कभी हलचल में नहीं आ सकते, वो सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने दूसरों को, ये विशेष शक्ति ड्रामा की पॉइंट उनमें है। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, ये ड्रामा की पॉइंट है। इस शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते ड्रामा की पॉइंट से। इसलिए कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। तो ड्रामा को कैसे देखो, धैर्यवत बन साक्षी हो के देखने का, धैर्यवत हो साक्षी बन देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। जो भाई बहने शांतिवन से किसी भी प्रोग्राम में आए हो और ऊपर आए हैं, जरा हाथ उठाएंगे।